arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर पद्मा मणि।
6.2 अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकन स्वतंत्रता संघर्ष की प्रस्तावना। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पश्चिमी विश्व के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इस स्वतंत्रता युद्ध ने 16वीं एवं 17वीं सदी के यूरोपियन उपनिवेशवाद को परास्त किया। इस युद्ध क्रांति के फलस्वरूप एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की ही नहीं अपितु नए सिद्धांतों का भी जन्म हुआ था, जो आगे चलकर संपूर्ण यूरोप एवं विश्व में क्रांति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला, अमेरिका महाद्वीप की खोज। अमेरिका की खोज जिनेवा यानी इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में किया तथा इसे नई दुनिया का नाम दिया। आगे चलकर मैगलेन और अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण खोज की। अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका के भूखंड की अनेक समुद्री यात्राएं करके इसके पूर्वी तट का पता लगाया, इसलिए इस भूखंड का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिकी भूखंड के अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। अमेरिका महाद्वीप की खोज के पश्चात अगले 350 वर्षों में यूरोप वासियों ने अमेरिका की संपत्ति को खूब लूटा। स्पेन के अधीन ब्राजील को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण अमेरिका था। इंग्लैंड और फ्रांस का उत्तरी अमेरिका पर आधिपत्य था। दूसरा, अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेश। महारानी एलिजाबेथ के समय से ही अमेरिका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हो गया था। सर वॉल्टर रेले ने वर्जीनिया में इंग्लैंड का प्रथम उपनिवेश स्थापित किया। इंग्लैंड और फ्रांस में राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सैनिक प्रतिस्पर्धा थी, जिसके कारण दोनों देशों में सप्तवर्षीय युद्ध हुई, जो 1756 से 1763 ईस्वी तक हुई थी, जिसमें फ्रांस की हार हुई। अब कनाडा फ्रांस के हाथ से निकल गया। पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड का अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर अधिकार मान लिया गया। वे उपनिवेश इस प्रकार थे, पहला न्यू हैम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड आइलैंड, चौथा कनेक्टिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, छठवां न्यू जर्सी, सातवां पेंसिल्वेनिया, आठवां डेलावेयर, नौवां मैरीलैंड, दसवां वर्जीनिया, ग्यारहवां उत्तरी कैरोलिना, बारहवां दक्षिणी कैरोलिना तथा तेरहवां जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेश आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, जो अटलांटिक महासागर का तट है, पर स्थित थे। अंग्रेजों ने इन उपनिवेशों का बहुत ज्यादा शोषण किया, अतः उपनिवेशों की जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजों का घोर प्रतिरोध किया और ये 13 उपनिवेश इंग्लैंड के हाथ से निकल गए तथा स्वतंत्र हो गए। इंग्लैंड के विरुद्ध जिस समय अमेरिका के लोग क्रांति किए, उस समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांति के कारणों का विश्लेषण इस प्रकार है। आधारभूत कारणों में, पहला, नाराज एवं असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना। इंग्लैंड की धर्मांधता की नीति से नाराज होकर प्यूरिटन लोगों ने अमेरिका जाकर उपनिवेश स्थापित की थी। यहाँ इन लोगों ने परिश्रम के द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार विकसित किया था। इंग्लैंड की सरकार ने अब इन लोगों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, अतः ये इंग्लैंड सरकार के विरुद्ध क्रांति कर दिए। दूसरा, असंतोषजनक शासन प्रणाली। उपनिवेशों की शासन प्रणाली दोषपूर्ण थी। उपनिवेशों के गवर्नर की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था, जबकि उपनिवेशों की व्यवस्थापिका के सदस्यों की नियुक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होती थी। उपनिवेशों के गवर्नर जनरल को प्रतिनिधि सभा या लोकसभा द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल ने व्यवस्थापिका की शक्ति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, जबकि अमेरिका की जनता गवर्नर जनरल की शक्ति को कम कर व्यवस्थापिका व इसकी शक्ति को बढ़ाना चाहती थी। इस कारण भी उपनिवेश की जनता का अंग्रेजों से मतभेद था। तीसरा, नौपरिवहन अधिनियम। नौपरिवहन अधिनियम यानी नेविगेशन एक्ट के अनुसार इंग्लैंड और अमेरिका का व्यापार चलता था। इस कानून के अनुसार इंग्लैंड और उपनिवेश के बीच अथवा यूरोप के अन्य देशों के साथ ब्रिटिश जहाज़ों के द्वारा ही माल ढोया जा सकता था। अतः अमेरिकन व्यापार की प्रगति के मार्ग में नेविगेशन एक्ट बहुत बड़ा रोड़ा था। दूषित व्यापार प्रणाली असंतोष का एक प्रधान कारण था। चौथा, व्यापार पर इंग्लैंड का नियंत्रण, ट्रेड एक्ट्स। व्यापार संबंधी कानून ट्रेड्स एक्ट्स कहलाता है। इससे उपनिवेशों का शोषण होता था और उनके आर्थिक विकास में प्रतिबंध लगता था। उपनिवेशों पर इंग्लैंड का व्यापारिक एकाधिपत्य था। जैसे 1733 ईस्वी के कानून के अनुसार अमेरिका को गैर ब्रिटिश उपनिवेशों को बनाकर दिए व्यापार की अनुमति नहीं थी। 1699 ईस्वी के कानून द्वारा संसद ने उपनिवेश से ऊनी माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। 1732 ईस्वी में अमेरिका से तोप के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1750 ईस्वी में उपनिवेशों में लोहे के माल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपनिवेशों से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां से तैयार माल उपनिवेशों को खरीदना पड़ता था। कुछ वस्तुओं के नाम निर्धारित थे जिसे उपनिवेश इंग्लैंड ही भेज सकते थे, अन्यत्र नहीं, जैसे चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, ऊन, चमड़ा आदि। इस तरह इंग्लैंड का उपनिवेशों पर कठोर आर्थिक नियंत्रण था और उपनिवेशवासी चाहकर भी अपना माल अन्य देशों को नहीं भेज सकते थे। पांचवा, कृषकों की दयनीय स्थिति। दक्षिणी उपनिवेशों के किसान तंबाकू उगाते थे। ब्रिटिश पूंजीपति लोग तंबाकू का सही मूल्य किसानों को नहीं देते थे, हमेशा किसानों से उनकी वस्तुएं सस्ते में खरीद लेते थे। किसान हमेशा कर्जों के बोझ में लदा रहता था, अतः किसानों में ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं राजनीतिज्ञों के विरुद्ध असंतोष था। छठवां, मध्यम वर्ग का उदय। अमेरिका के मध्यम वर्ग का मानना था कि जब तक इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहेगा तब तक अमेरिका का आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता। अतः मध्यम वर्ग के लोगों ने इंग्लैंड के प्रतिबंध का अमेरिका में विरोध किया। सातवां, बौद्धिक जागृति। सन 1756 से 1766 ईस्वी के बीच अमेरिका में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक पुस्तिकाओं ने लोगों में बौद्धिक चेतना जागृत की। अधिकांश अमेरिकी अंग्रेजी मूल के थे। 1765 ईस्वी में स्टीफन हॉपकिंस ने द राइट ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड। 1769 ईस्वी में सैमुअल एडम्स कृत राइट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। सैमुअल एडम्स के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उपनिवेशों में एकता आई। स्वतंत्रता विचार के प्रसार में सैमुअल एडम्स का महत्वपूर्ण योगदान था। अन्य लेखकों में वर्जीनिया के पैट्रिक हेनरी, न्यूयॉर्क के आइजक सिथरस तथा जेम्स लैम्थ, दक्षिणी कैरोलिना के क्रिस्टोफर गैडेस्टन आदि। इन लेखकों ने अमेरिका के लोगों को जागृत किया। जब अमेरिका ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाओं की स्थापना की और इंग्लैंड का विरोध किया। आठवां, अमेरिकी समाज का उदार होना। अमेरिकी समाज नया, सरल और स्वाभाविक था। अमेरिकी समाज में मेहनत, साहस और विपदाओं को सहने की क्षमता थी। उपनिवेश में रहने वाले अधिकांशतः शिल्पी, व्यापारी और किसान थे। इंग्लैंड से आने के कारण उनमें स्वतंत्रता की भावना अधिक थी। अब ये उपनिवेश के सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो रहे थे तथा इंग्लैंड को विदेशी मानकर तथा उसका अमेरिकी व्यापार के प्रभुत्व को समाप्त कर एक उदार अमेरिकी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसमें सबसे बड़ा बाधक इंग्लैंड था। अतः उपनिवेश वासियों यानी अमेरिकियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति की। नवा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसियों की अंग्रेजों से हार हुई थी। अब उपनिवेशों में फ्रांसीसी अधिकार का खतरा नहीं रहा तथा अब वे इंग्लैंड से लोहा लेने में समर्थ हो गए। दसवां, ग्रैनविल की आपत्तिजनक नीतियां। 1763 ईस्वी में जॉर्ज ग्रैनविल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ। इसकी नीतियों से उपनिवेशवासी नाराज थे। इन नीतियों में पहला, एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना। अमेरिका में तस्करी और चोर बाजारी को रोकने के लिए ग्रैनविल ने एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की। इसमें तस्करी में लिप्त अपराधियों को कठोरतम दंड की व्यवस्था थी। दूसरा, शीरा अधिनियम। सन 1764 में ग्रैनविल ने शीरा कानून पास किया। इस कानून के अंतर्गत सभी स्थान से आए शोरे यानी शीरा पर कर लगा दिया गया और शोरे से उत्पन्न विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। इससे उपनिवेशवासी न तो सस्ते दामों पर शोरा प्राप्त कर सकते थे और न ही रम, अतः अमेरिकियों में असंतोष था। तीसरा, रेड इंडियनों की सुरक्षा। ग्रैनविल ने एक घोषणा द्वारा मिसिसिपी नदी क्षेत्र में बड़े विस्तृत भाग अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन के लिए सुरक्षित कर दिए। इससे भी अमेरिका ग्रैनविल के विरुद्ध हो गया। चौथा, उपनिवेशों की सुरक्षा हेतु ग्रैनविल ने एक छोटी सी सेना अमेरिका में रखने की घोषणा की। इस सेना के रखरखाव के खर्च के लिए 1/3 उपनिवेश वासियों को देना अनिवार्य था। पांचवा, स्टैंप एक्ट। ग्रैनविल ने धन आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपनिवेशों पर स्टैंप एक्ट लगाया, जो कि क्रांति के तत्कालिक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। तात्कालिक कारण, इसके अंतर्गत पहला, स्टैंप अधिनियम 1765 ईस्वी और सेना का तैनात किया जाना। स्वेच्छा से उपनिवेशवादी इंग्लैंड को कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहे थे, अतएव ग्रैनविल ने उपनिवेशवादियों से धन प्राप्त करने के लिए 23 मार्च 1765 ईस्वी को स्टैंप एक्ट पारित किया। इसके अनुसार सभी सरकारी कागजों में स्टैंप लगाना जरूरी था। अमेरिका वासियों ने इस एक्ट का घोर विरोध किया और यह नारा लगाया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। लाचार होकर सरकार ने 1766 ईस्वी में यह एक्ट समाप्त कर दिया। इस एक्ट के खर्च से अमेरिका में ग्रैनविल अंग्रेजी सेना में रखना चाहता था, पर स्टैंप एक्ट का विरोध होने के कारण ग्रैनविल सफल नहीं हो पाया। दूसरा, रॉकिंगहम की घोषणा। 1765 ईस्वी में इंग्लैंड में रॉकिंगहम की सरकार बनी। रॉकिंगहम ने यह घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा पूरा अधिकार है। इस घोषणा से भी अमेरिकी बड़े असंतुष्ट हुए। तीसरा, टाउनशेंड की कर लगाने की योजना। 1767 ईस्वी में वित्त मंत्री टाउनशेंड ने चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग पर आयात कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इसका घोर विरोध किया। चौथा, चाय पर कर लगाने का प्रयास। 1771 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री था। इसने कागज और शीशे से आयात कर हटा लिया, किंतु चाय पर आयात कर रहने दिया, जिससे अमेरिका वासी बहुत नाराज थे। अमेरिका वासियों का मानना था कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। उनकी नाराजगी के बाद भी लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 ईस्वी में चाय एक्ट पास कर दिया। पांचवा, बॉस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी के चाय अधिनियम द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को अपने उपयोग में आने वाली सारी चाय अनिवार्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही खरीदनी पड़ती थी। इस चाय एक्ट का सबसे पहले विरोध मैसाचुसेट्स के उपनिवेश में प्रारंभ हुआ। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष धारण कर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़कर चाय की 343 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता है।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।